क्या ये तकबर नहीं है कि अगर हमें मौका भी मिले और हम ना पढ़े, सीखने का मौका भी हो और ना सीखे? कौन कह सकता है कि आज मौके नहीं है? पहले एक दौर होता था, लोग चल के जाते थे, वो जाबिर जैसे एक हदीस सुनने के लिए एक महीने का सफर करके मुल्क शाम पहुंचते हैं। और ये एक लंबी कहानी है कि सहाबा किराम क्या सफर करते थे। लेकिन आज तो हमारे घरों में इल्म मौजूद है, एक बटन दबाते हैं और हमारे कंप्यूटर्स में इल्म है, हमारी कैसेट्स में इल्म है, हमारी टेप्स में इल्म है, और कुछ अल्लाह के बंदे हैं भी जो सिखा भी रहे हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं, सब आता है, बहुत पता है। थोड़े पे राजी होकर बैठ जाते हैं कि बहुत आता है, और जिस बंदे ने अपने आप को इल्म वाला समझ लिया वही उसके भटकने की अलामत है। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि हमें सीखने की तौफीक दे दे। लेकिन हम अपने जाने वालों के लिए क्या करें, इसको इसाले सवाब कहते हैं अमूमन। बस लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा गलत फहमियों का शिकार हैं। चंद चीज़ें और जो सही अहदीस और कुरान से मिलती हैं, और ये कई हैं। बस लोग कहते हैं कोई इसाले सवाब नहीं है, मरने के बाद कुछ नहीं कर सकते, जो कर गए कर गए। नहीं, मरने के बाद माँ बाप के साथ क्या मामला किया जा सकता है, वक्त नहीं है। सिर्फ इशारतन बात करूंगी, और इसकी डिटेल्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिकॉर्डेड भी हैं लेक्चर्स में, आप सुनना चाहें, और जो क्लासेस होती हैं उसमें गाहे बगाहे इस पे बात होती है। तो सबसे पहला हक जिंदगी के मैंने नहीं छेड़े, क्योंकि वो 15 से 20 हैं जो इस वक्त मौका नहीं और वक्त भी नहीं है ना हमारे पास। लेकिन दुनिया से जब कोई चला जाए तो क्या किया जाए, माँ बाप की नमाज जनाजा अदा करना। और जैसा कि मैंने अभी तذکرہ किया कि अगर आप अपना कोई पढ़ाएगा ना तो वो ज़्यादा दर्द से पढ़ाएगा। एक शख्स थे बहुत नेक, घराना पूरा मारूफ था इसी चीज़ में। जब उनका इंतकाल हुआ तो बड़े बड़े आलिम मौजूद थे, शहर के मारूफ शख्स थे। तो जनाजे की तैयारी में किसी आलिम ने नमाज जनाजा पढ़ानी थी, लेकिन टीनेजर लड़का, यंग बच्चा था, उसने कहा कि मैं पढ़ाऊंगा अपने बाप का जनाजा। उन्हें कहा इससे अच्छी और क्या बात है, आप पढ़ाइए। फिर उस यंग बच्चे ने अपने बाप की नमाज जनाजा शुरू की, माइक पे हो रही थी, और जब वो इस दुआ पे आया कि रब्बे रहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तो पूरी बस्ती ऐसे थी जैसे आंसुओं से रो रही थी। उस दिन लोगों को पता चला कि इस बाप की मेहनतें कैसे रंग लाई हैं। कोई इतने दर से नहीं मांग सकता था जितने दर से उसने मांगा कि अल्लाह मेरे माँ बाप पे रहम कर दे। चलिए आज जाके अपने बच्चों से पूछ लें कि बेटा ये दुआ आती है क्या, आदत है इसको पढ़ने की। चले उनको छोड़े, अपने आप को पूछ लें। मुझे लगता है कि इंसान और कुछ भी ना मांगे ना, सिर्फ ये एक दुआ मांग ले तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि अगर हमें कोई खैर मिलेगी तो हमारे माँ बाप को भी तो मिलेगी ना। सूरत बनी इसराइल की आयत है, उसमें है, अगर आप में से कोई याद भी करना चाहे तो। बहरहाल नमाज जनाजा, फिर दूसरी बात उनके लिए दुआ करना। मैयत की बख्शिश की दुआओं में एक बड़ी मारूफ दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू वरहमहू वाफ़ीही वाफ़ू अन्हु वकरिम नुज़ुलहू वबस्से मुदखलहू वअब्दिलहु दारन खैरा मिन दारिहू वअहलन खैरा मिन अहलहू वज़ौजन खैरा मिन ज़ौजहू वअदखिलहुल जन्ना वअईज़हु मिन अज़ाबिन नार। खुलासा क्या है कि अल्लाह इसको माफ़ कर दे, ये था बड़ा गुनाहगार लेकिन तू माफ़ कर दे, इस पे रहम कर दे, इसको आफ़ियत दे, इसको इस दुनिया के घर से अच्छा घर दे, इसको दुनिया के जोड़े यानी शौहर या बीवी से अच्छा जोड़ा वहाँ दे, यहाँ की औलादों से अच्छी औलादें वहाँ दे। यानी एक एक लफ्ज़ ऐसे लगता है कि मोहब्बतों का हक अदा होता है। मसनून दुआ है, किताबों में मिलती है, हिस्नुल मुस्लिम में भी है, अलग से इसके कार्ड्स भी मिलते हैं। अल्लाह ना करे किसी का अगर इंतकाल हो तो हमारे पास ऐसे कार्ड्स दुआएं होनी चाहिए। जो लोग पुरसे के लिए आए एक एक चीज़ पकड़ाते जाएँ उन्हें कि आप भी पढ़ें हम भी पढ़ते हैं। क्योंकि हदीस में आता है कि मैयत वाले घर में 3 दिन तक हर बात पे फरिश्ते आमीन कहते हैं। अगर उस वक्त किसी ने ये कहा ना कि हाय मैं लुट गई, हाय मैं बर्बाद हो गई, तो फरिश्ते कहेंगे आमीन, ऐसे ही हो। इसलिए बहुत सोच के बोलना चाहिए, कभी ऐसी जगह जाना पड़े जिक्र खैर करें जाने वाले का और उसके लिए दुआ करें। किससे कहानियाँ, ये थे वो थे क्या हुआ, सारों से वही कहानी सुननी, और सुनते भी उससे जो सबसे करीबी हो, ज़ख्म भरने नहीं देते, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। आपने फरमाया कि मैयत ऐसे होती है जैसे मछली को पानी से निकालें तो वो तड़पती है, लेकिन जब उसके पिछले उसके लिए दुआ करते हैं तो उसको चैन आता है। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि मरने वाले का दर्जा एकदम कब्र में अच्छा कर दिया जाता है, उसका मुकाम बेहतर होता है। कहते अल्लाह ताला ये कैसे हो गया, तो कहा जाता है ये तेरे लिए पीछे से और तेरी औलाद ने दुआ की। अब उस दुआ के आप हम जो मर्जी तरीके बना लें, अल्लाह के नबी ने ये सीधा साधा तरीका बताया कि जितने इखलास से दुआ की जा सके वो करें, कभी भी करें। कोई फौत हो गया ना तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अख्लफली खैरम मिनहा, इसको पढ़ें। और कभी साल गुजर गया, 6 माह गुजर गए, 1 माह गुजर गया, फिर याद आए ना फिर यही पढ़ें। आपने फरमाया चाहे कितना ही अरसा गुजर गया हो किसी को मरे हुए, जब आपको वो याद आए ये दुआ पढ़े, अल्लाह उतना ही अजर देता है जितना पहले दिन ये पढ़ने पे अजर दिया था। फिर उसके बाद माँ बाप के लिए जो चीज़ है वो अगला स्टेप बाई स्टेप बताना चाहूंगी। अगर उनके जिम्मे को कर्ज था तो उसकी अदायगी का फौरी इंतजाम किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत मुअल्लक रहती है, यानी जमीन और आसमान के बीच में लटकी रहती है जब तक उसका कर्ज अदा ना किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लम को जब किसी की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट की जाती तो आप पूछते क्या इसके सर पे कोई कर्ज तो नहीं था, अगर कहते था तो आप कहते कोई और पढ़ा ले, क्योंकि नबी का नमाज जनाजा पढ़ाना एक शान होती है और ये शान हर एक को नहीं मिलती थी। और एक सहाबी फौत हुए और कहा कि क्या शहादत सारे गुनाहों को माफ कर देगी, तो आपने कहा सब कुछ मगर कर्ज के सिवा, कर्ज नहीं माफ होगा। और आज तो मुझे लगता है नस्लों की नस्लें कर्ज में रखी हुई हैं, रहन रखी हुई हैं, गिरवी रखी हुई हैं। आज क्या किसी का विरसा बटेगा, वो तो कर्जे छोड़ के गया, जिस घर को आपने अपना कहा वो तो आपका था ही नहीं। कर्ज की अदायगी फौरी इंतजाम करना नहीं मुमकिन तो वहां खड़े होकर ऐलान किया जाए कि मैं अपने बाप या माँ का जो भी कर्ज है उसको अदा करूंगी। फिर उसके बाद अगली चीज ये है कि अगर उन्होंने कोई मन्नत मानी थी, जायज काम की मन्नत इंसान मान सकता है, गो के इससे तकदीर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई मन्नत मानी हुई थी कि मैं ये काम करूंगी तो फिर उसको पूरा करें। इन सब के दलाइल भी मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको अपने लफ्जों में इस वक्त बताना चाह रही हूँ कि हम कम से कम वक्त में बात पूरी कर लें। एक औरत ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लम, मेरी माँ किसी बहरी जहाज में सफर में थी, फिर समंदर में तूफान आ गया, तो उस तूफान के अंदर उसने मन्नत मान ली कि अल्लाह ताला अगर तू मुझे यहाँ से बचा देगा तो मैं कुछ नफिल पढ़ूंगी या रोजा रखूंगी, कुछ इस तरह की बात थी। दो तीन जगह आता है, एक सहाबी ने पूछा, एक सहाबिया ने कहा कि फिर अल्लाह ताला ने उस सफर से उसको निजात दे दी, यानी खैरियत से मामला ठीक हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी मन्नत पूरी करती बाद में उसका इंतकाल हो गया, तो क्या मैं उसकी मन्नत पूरी करूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर उसके जिम्मे किसी का कर्ज होता तो क्या तुम देती? कहा जी देती। तो कहा कि फदैनुल्लाहि अहक्कु अन युक्दा, तो फिर अल्लाह का कर्ज ज्यादा हक रखता है कि उसको अदा किया जाए, तो लिहाजा मन्नत मानी जाएगी। इसी तरह एक और अगला काम क्या है, उनकी तरफ से सदका खैरात करना। ये उनके अपने पैसों में से भी हो सकता है, मसलन जैसे विरसे के जो पैसे होते हैं उसमें से भी हो सकता है और अपनी तरफ से भी हो सकता है। नबी सल्लम के ऐसे एक शख्स आए और उन्होंने कहा कि मेरा बाप फौत हो गया, उसने कोई वसीयत नहीं की, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर वो वसीयत करते तो सदका खैरात की वसीयत करते तो क्या मैं उनके पैसों में से कुछ सदका करूं? तो आपने कहा हाँ कर दो। तो लिहाजा अगला काम जो इसी से मिलता है वो क्या है कि मरने वाले का जो विरसा है उसकी शरई बांट की जाए। 3 दिन के अंदर अंदर ये काम हो जाना चाहिए। मरने के बाद जो चीज़ें होती हैं बेटों और बेटियों में जाती है, अल्लाह ने इसके पूरे हिस्से दे दिए। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, और उससे आगे जिसको जो हिस्सा मिलता है वो दिया जाएगा। विरसे की गलत बांट मैयत को भी तकलीफ देती है और पीछे वालों पे भी बोझ है। आपने फरमाया कि सारी जिंदगी नेकियों के काम करता है, हत्ता के जन्नत के बिल्कुल करीब होता है, लेकिन गलत वसीयत की वजह से वो जहन्नुम में चला जाता है। मसलन ये वसीयत कर दी, फलां बच्चे को आग करता हूँ, फलां को ना देना, सारा मस्जिद को दे देना, सारा उसको दे देना, फलां कर देना, मेरे पैसों से कोई सिनेमा बनवा देना, ये गलत वसीयतें होती हैं। तो लिहाजा उनके विरसे की शरई बांट करना, जिसको जो हिस्सा मिलना है वो दें, बाद में आपका नहीं दिल चाहता आप जिसको मर्जी दें। हमारे यहाँ इसमें भी बहुत कमियां हैं, बेटियों को मिलता ही नहीं, बहनें बेचारी जज्बात में आ जाती हैं, भाइयों को ही दे दें। बहरहाल हुक्म यही है कि शरई बांट होगी। फिर उसी के अंदर वसीयत भी है, मरने वाला अपने माल में से 1/3 यानी 100 में से 33 रुपये 33 पैसे की वसीयत कर सकता है। चंद शरायत है, उसको ना करे जिसको पहले ही मिल रहा है, यानी बच्चों को पहले हिस्सा मिल रहा है, बेटियों को बेटों को वसीयत में से नहीं दे सकते उसको। कोई और किसी को, कोई मामू को दे रहा है, फूफो को दे रहा है, कोई मस्जिद बना दे, कोई मदरसे में डाल दे, कर सकते हैं। यानी इस वक्त मेरे पास जितने अपने पैसे हैं ना, वो इस वक्त तो मेरे हैं, अभी मेरी आंखें बंद हो जाएंगी ना तो उसमें से 2/3 मेरे नहीं रहेंगे, 1/3 मरने के बाद रहता है। तो बेहतर है कि बंदा जिंदगी में देता रहे ताकि आसानी रहे। फिर उसके बाद अगली चीज जो मरने वाले का हक होता है वो क्या है कि अगर उसके फर्ज रोजों में से कोई रोजा छुटा हुआ है, कभी बीमारी की वजह से, कभी नासमझी की वजह से पिछली अगली जिंदगी के रोजे नहीं रखे गए, तो क्या करें? आपने फरमाया कि मम माता व अलैहि सियामु, जो मर जाए और उसके जिम्मे रोजे हों तो फसामा, तो रोजे रखे उसका वली, तो लिहाजा उसके फर्ज रोजों की अदायगी। अब कितने क्या है हिसाब रखा होता है, अगर नहीं पता तो और बात है, लेकिन बहरहाल ये तो हमें अपने भी रखने होते हैं जो हमारे छुटते हैं, तो फर्ज रोजे हैं। फिर उसके बाद अगली चीज क्या है कि मरने वाला अगर साहिब इस्तेताद था, यानी हैसियत थी, लेकिन हज नहीं किया, अब हज उसके ऊपर जिम्मे है, तो उसका हज अदा किया जाएगा। और जाहरी बात है कि जितना कोई अपना करीबी करेगा उतना ही अच्छा है। फिर इसके बाद अगली चीज यह है कि अगर उन्होंने किसी से कोई वादा किया था कि मैं तुम्हें ये दूंगा या करूंगा या कोई और वादा, तो उसको पूरा करने की कोशिश की जाए। फिर अगली चीज यह है कि मरने वाले के बाद, यानी जो खास तौर पे मैं इसको माँ बाप के लिए लेती हूँ, और वो क्या है कि उनके दोस्तों का एहतराम करना, इकराम करना, उनके रिश्तेदारों से सिला रहमी करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को बहुत पसंद किया कि कोई मर जाए तो उसके बाद खास तौर पे उसके दोस्तों को मिलना, जैसे हमारे माँ बाप हैं, उनके दोस्त, सहेलियाँ चाहिए, स्पेशली मिल के आए। अगर माँ नहीं है ना तो माँ की दोस्त को ढूंढें, माँ नहीं है तो खाला की खिदमत करें, बाप नहीं है तो चचा, ताया, दादा, इनको देखें। और आपकी भी तो वो लगती है ना कुछ, फूफी तो आपकी भी होंगी, लेकिन आप ये कह के मिला करें कि मैं अपने अब्बू की बहन को मिलने जा रही हूँ, मैं अपनी माँ की बहन को मिलने जा रही हूँ। इससे मोहब्बत भी बढ़ती है और उनको खुशी भी होती है। फिर इसी तरह औलाद जो नेकी करती है वो माँ बाप को अजर मिलता है, जिंदगी में भी मिलता है, बाद में भी मिलता है। बस इस वक्त हम सब ने अल्लाह की बात सुनी सुनाई, अल्लाह ताला इसमें से सही बात को कबूल कर ले और गलतियों को माफ़ कर दे, तो हमारा ईमान है कि हमारे माँ बाप को इसका अजर मिलेगा, वो जिंदे हैं तो भी, फौत हो चुके हैं तो भी। हमें हाथ उठा के कहने की कोई ज़रूरत नहीं कि इसमें जो पढ़ा गया इसका सवाब उनको दे, वो इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, उन्होंने लिख लिया है, एक एक बात लिखी जा रही है, अभी हमने सुन ली ये बात, तो लिहाजा उस सूरत में भी उनके साथ मामला किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका मेरा हर अमल माँ बाप के नाम पे जाता है, और ख़ास तौर पे अगर उन्होंने इस पे कोशिश की है, कुछ किया है, तो वो तो फिर बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि अल्लाह ना करे अगर हम कोई गलत काम करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी करते थे, उन्होंने हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ खरीदी जिसको आज हम गुनाह में इस्तेमाल करते हैं, तो खुदा के लिए उसको तोड़ दें, उसको ज़ाया कर दें, क्योंकि ये आपके माँ बाप का एक करंट अकाउंट खुला हुआ है, आप उठा के किसी और को देंगे, हो सकता है आपसे भी ज़्यादा वो गलत इस्तेमाल करें। उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, और ऐसी तमाम चीज़ों को ये सोच के करें कि अब कब्रों में मेरे माँ बाप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी नेकियों का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर ख़ास तौर पे माँ बाप के लिए अगर मर्द हैं, लड़के हैं और मर्द हैं, तो वो कब्रों पे जाके उनकी कब्र पे जब कभी मौका मिले दुआ भी की जा सकती है, औरतें भी जा सकती हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं, लेकिन पहली बात है कि इसको आदत नहीं बनाना चाहिए, दूसरी बात है रस्म नहीं बनाना चाहिए, तीसरी बात है इसके लिए किसी खास दिन का एहतमाम नहीं करना चाहिए कि फलां ईद का दिन है तो आप जा रहे हैं, शब रात है तो ये मुर्दों की ईद है, ये खुद साख्ता बातें हैं। वैसे आप जाएं लेकिन वहां जाके फिर रोना धोना या उर्स मेले मनाना और वहां शादी का एहतमाम लगे, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो हमारे यहाँ एक तसव्वुर है कि कब्रिस्तान में जब औरतें जाती हैं तो मुर्दों को नंगी दिखती हैं, ये खुद साख्ता बातें, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ वहां जाके दुआ मांगी जाएगी। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जत यम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नक अंत तवाब रहीम। सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्किही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।